बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज 4 दिसंबर 2018 है। आज हम किताब मुताला पाकिस्तान लाजमी रिकॉर्ड कर रहे हैं। बराए बीए, बीएससी, बीकॉम, जदीद निसाब इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के मुताबिक। इस किताब के मुसन्निफ मोहम्मद नईम ताहिर पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं। ये किताब 237 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ये इस किताब का पार्ट नंबर 1 है। ये किताब आपकी खिदमत में असुफा ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। मज़ीद किताबों की रिकॉर्डिंग हासिल करने के लिए इस नंबर पर रब्ता कीजिए 0321-2138-225 या विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.alsuffa.org, www.alsuffa.org। ये पेज नंबर 1 है। आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 1। किताब का नाम इरफा मुताला पाकिस्तान, मौलिफ मोहम्मद नईम ताहिर, सन अशात 2017, तादाद 1000, कीमत 160 रुपये, नाशिर अलबदर अलबदर किताब घर बहावलपुर। इंतसाब, मेरे काबिल एहतराम असातिज़ा के नाम जिन्होंने हर कदम पर मेरी रहनुमाई फरमाई। चंद बातें, गुज़िश्ता कई बरसों से ये किताब मुताला पाकिस्तान असातिज़ा और तालिबे इल्मों के ज़ेरे मुताला रही है और इसे जो पज़ीराई मिली है वो अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है। इस किताब को ज़रूरी इजाफ़ों के साथ दोबारा शाया किया जा रहा है और कोशिश की गई है कि कोई इबहाम बाकी ना रहे। मार्केट में कई दीगर कुतुब भी मौजूद हैं। मेरी असातिज़ा और तालिबे इल्मों से गुजारिश है कि किताब ख़रीदने से पहले मवाद का तज्ज़िया ज़रूर कर लिया करें। मुझे इस बात पर बड़ी खुशी हुई कि गुज़िश्ता बरस गवर्नमेंट सादिक गर्ल्स डिग्री कॉलेज की एक खातून प्रोफेसर ने एक दुकान से मुताला पाकिस्तान की मौजूद तमाम कुतुब खरीद कर मुताला किया और फिर इरफा मुताला पाकिस्तान को अपने तालिबे इल्मों के लिए बेहतर करार दिया। मैं इनकी इस हौसला अफजाई का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ज़ेरे नज़र किताब मुताला पाकिस्तान इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के जदीद निसाब को मद्देनजर रख कर लिखी गई है और इसमें निसाब के तमाम पहलुओं का अहाता किया गया है। तालिबे इल्मों की इम्तहानी ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए नहायत आसान और सादा ज़बान इस्तेमाल की गई है। क़ारी अगर इसमें कोई खूबी पाए तो उसे अल्लाह ताला का फजल और ख़ास इनायत समझे। इस नए एडिशन को इंतहाई एहतियात और ज़िम्मेदारी से मुकम्मल तहकीक और तस्दीक के बाद ही तहरीर किया गया है। तहम फिर भी मुमकिन है कि कहीं कोई गलती या खामी रह गई हो। मेरी कारीन से गुजारिश है कि अपनी इल्मी बसीरत और बुलंद नजरी से जायजा लेकर इससे आगाह फरमाएं ताकि उन खामियों का अजाला किया जा सके। किताब की तैयारी के सिलसिले में जिन असातिज़ा और दोस्तों का तआवुन और मुआवनत शामिल रही है, मैं उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पर अपने शरीक हयात नादिया नईम का, जिन्होंने किताब के प्रूफ को हर्फ हर्फ पढ़ा। वस्सलाम, मोहम्मद नईम ताहिर। बाब नंबर 1, पाकिस्तान का नजरियाती व आईनी इर्तका। नजरिए से क्या मुराद है? इंसानी जिंदगी का एक खास मकसद होता है। मकसद के बगैर इंसान की ज़िंदगी बेमानी होती है। जब कोई ख़ास मकसद बहुत से लोगों की ज़िंदगी का मुश्तरका नज़्बुलैन बन जाए तो वो उनका मुश्तरका नज़रिया हयात कहलाता है। किसी भी इनकलाबी तहरीक के पीछे कोई ना कोई नज़रिया कारफरमा होता है और किसी भी कौम की इज्तमाई ज़िंदगी में नज़रिए की हैसियत रूह की होती है। नज़रिए ही से सियासी, माशरती और मुआशी पहलू तरतीब पाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि नज़रिए ही से ज़िंदगी का निज़ाम बनता है। नज़रिया पाकिस्तान से मुराद वो नज़रिया है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। ये नज़रिया इस्लाम है और पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पर वजूद में आया। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि नजरिया पाकिस्तान का मफहूम ये होगा कि पाकिस्तान का सियासी, मुआशी और मुआशरती गर्ज ये कि पूरी जिंदगी का निज़ाम अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक होगा और हर मामले में रहनुमाई कुरान और सुन्नत से हासिल की जाएगी। दो कौमी नजरिया। क़याम पाकिस्तान और मुसलमानों की तहरीक आज़ादी की सबसे बड़ी वजह दो कौमी नज़रिया था। इसका मतलब ये था कि हिंदुस्तान में हर लिहाज से दो कौमें आबाद हैं जिनका तर्ज ज़िंदगी, तर्ज मुआशरत एक दूसरे से अलग थलग है, क्योंकि मुसलमान हमेशा से एक अलहदा कौम रहे हैं। ये इस्लामी रियासत का एक मुख्तसर सफ़ाका है जिसकी बिना पर मुसलमान दुनिया को अपना अलग वजूद मनवाने के लिए एक अलहदा वतन चाहते थे। दो कौमी नजरिया और कुरान पाक। इरशाद रब्बानी है कि नौए इंसान शुरू में एक ही उम्मत के फर्द थे, फिर इनमें इख्तलाफात पैदा होने लगे तो खुदावंदे करीम ने अंबिया किराम का सिलसिला शुरू किया और इनके साथ जाप्ता कवानीन भी मुरतब किया। एक और जगह कुरान पाक में इरशाद होता है, खुदावंद ने तुम सबको पैदा किया फिर तुम में से एक गिरोह इंसानियत की जिंदगी से इनकार कर दिया, दूसरे गिरोह ने उसे तस्लीम कर लिया। इस फरमाने इलाही के तहत इंसानी दुनिया दो गिरोहों में तकसीम हो गई, बुलंद सतह जिंदगी से इनकार करने वालों को काफिर और हकीकी जिंदगी को तस्लीम करने वालों को मोमिन कहा गया। दो कौमी नजरिया और अंबिया किराम। कुरान के मुताबिक कौमों की जिंदगी का यही मायार है, यानी मोमिन या काफिर, मुस्लिम या गैर मुस्लिम। इस मायार को अगर हम देखेंगे तो अंबिया इकराम की जिंदगियों में वाज़ह फर्क नजर आता है। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक तरफ, उनका बेटा दूसरी तरफ, इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक तरफ और उनका बाप आदर दूसरी तरफ। हजरत इब्राहिम ने इसी बिना पर उनसे कत ताल्लुक किया था क्योंकि वो हकीकी जिंदगी को पसंद नहीं करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स मेरी पैरवी करता है, वह वो किसी कबीले का फर्द और किसी वतन का बाशिंदा हो, वो मेरे अपनों में से है, और जो मेरे अपने किसी दूसरी राह पर चले वो मेरे लिए गैर है। इरशाद रब्बानी है कि मोमिनीन की जमात के अफराद एक दूसरे के दोस्त और चारा साज हैं। कुरान पाक में वाज़ह तौर पर कहा गया है कि गैर मुस्लिम कभी तुम्हारे दोस्त और बही ख्वाह नहीं हो सकते, बल्कि जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, उनकी खुशी तुम्हारे नुकसान में है। इस्लाम तसव्वुर और नजरिए के तहत मुसलमान गैर मुस्लिम हुक्मरानों के मातहत जिंदगी नहीं गुजार सकते। दो कौमी नजरिए की तारीफें। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 27 दिसंबर 1981 को मुल्क के मुमताज दानिश्वरों को नजरिया पाकिस्तान की तारीफ मुतय्यन करने के लिए दावत दी थी। जो तारीफें सामने आई उनमें चंद एक ये हैं। नंबर एक, नजरिया पाकिस्तान और इस्लाम हम मानी है। नजरिया पाकिस्तान इस्लाम की अमली सूरत का नाम है। नंबर दो, नजरिया पाकिस्तान इनफरादी और इज्तमाई जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढालता है और इनसे मुनाफी नजरियात से बचने की तलकीन करता है। नंबर तीन, अल्लामा अलाउद्दीन ने अपने एक मकाले में नजरिया पाकिस्तान की तारीफ इन अल्फाज में की है। नजरिया पाकिस्तान इस चीज का नाम है कि इस सरजमीन के अंदर इस्लाम राइज हुआ, अफराद पर भी, जमात पर भी और हुकूमत पर भी, और तमाम क़ुव्वतों से कवी तर क़ुव्वत इस्लाम है। बरे सगीर में दो कौमी नजरिए के इर्तका के मौजिब अनासिर। नंबर एक, मजहबी उनसर। इस्लाम का बुनियादी तकाजा है कि मुसलमान अपनी एक अलहदा रियासत बनाए ताकि दीन की तकमील हो। इस्लामी रियासत के तकाजों को पूरा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनतुन नबी की तीसरी रियासत का आगाज किया। मजहब के प्रचार और दीन की अशाद के लिए रियासत बुनियादी मरकज की हैसियत रखती है। अगर मुसलमान इक्तदार पर कब्जा कर लेते हैं तो दूसरे तमाम शोबों पर इस्लामी कवानीन को लागू कर सकते हैं। दो कौमी नजरिए की रूह से बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए अलहदा मुमलिकत इस्लामी का मकसद बरसग़ीर के मुसलमानों को मजहबी आज़ादी, फराहम करना भी था। नंबर दो, मुआशी और मुआशरती उनसर। मुसलमान कौम अपनी माशरती खसूसियात के एतबार से मुख्तलिफ रही है। रस्म व रवाज, रवायात, लिबास, जबान और सकाफत के लिहाज से मुसलमान कौम हिंदुओं से मुमताज़ और मुनफरिद नज़र आती है। अंग्रेज़ दौर में मुसलमानों पर तजारती और मुआशी सरगर्मियों के दरवाजे बंद रहे, उन्हें सरकारी मुलाजमतों में भी जायज़ मकाम न मिल सका। हिंदू कौम ने मुआशियात के हर शोबे में अपनी इजारादारी कायम रखी थी। गोया अब अगर मुसलमान अपनी जुदागाना हैसियत को नहीं मनवाएंगे तो अंग्रेजों के जाने के बाद उनसे जालिमाना सुलूक रवा रखा जाएगा। इसीलिए मुसलमानों ने मुआशी हकूक के लिए अलहदा जिद्दोजहद कायम रखी और दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर अपना मुनासिब मकाम तलब किया। नंबर 3, जोग्राफियाई उनसर। अगर जोग्राफियाई उनसर का तजिया किया जाए तो इस बात का पता चलता है कि बरसगीर के इस खत्ते में जहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश वाक़ है, शुरू ही से मुसलमान अक्सरियत का गलबा रहा है। और ये जोग्राफियाई उनसर भी दो कौमी नजरिए में बहुत अहम रहा है। और जहाँ मुसलमान अक्सरियत में थे, अपने लिए अलहदा कौम की बुनियाद पर अलहदा खत्ता जमीन मांगा। नंबर 4, सकाफती उनसर। हिंदू मत और मुसलमान दो अलहदा तहजीबों के मालिक हैं। इनका तरीक़ा परस्तिश ही नहीं बल्कि रोज़मर्रा में दोनों कौमें बिल्कुल मुख्तलिफ रही हैं। हिंदू गाय की पूजा करते हैं, मुसलमान उसका गोश्त खाते हैं। दोनों की सकाफती कदरें, त्यौहार, अंदाज ज़िंदगी, तर्ज रिहाइश, फ़नून लतीफ़ा और लिबास वगैरह में जो फ़र्क है वो बिल्कुल नुमाया है और दो कौमों की नुमाइंदगी करता है। नंबर 5, सियासी पहलू। मुसलमान जब तक इकतदार में थे खुश थे, मगर जब अंग्रेजों का दौर शुरू हुआ तो मुसलमानों को हिंदुओं ने सियासी मैदान में पीछे छोड़ दिया और जमहूरियत के नाम पर अपनी सियासी इजारादारी कायम कर ली। सर सैयद ने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए मुसलमानों को कांग्रेस में शमूलियत से मना कर दिया। सर सैयद की जिंदगी में मुसलमान मुनज़्ज़म हो चुके थे। सर सैयद के बाद शिमला वफ्द के मुतालबात, जुदागाना इंतखाबी तरीका, मुस्लिम लीग का क़याम, 14 नुकात, खुतबा इलाहाबाद दो कौमी नजरिया में संगे मील की हैसियत रखते हैं। 1940 में ये नजरिया करारदाद पाकिस्तान की सूरत में मंजूर हुआ और पाकिस्तान इसी नजरिए की बुनियाद पर बना। हिंदू मुस्लिम सकाफती इख्तलाफात। इस्लामी सकाफत की बुनियाद अकीदे पर है, यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला ही इबादत व अताअत के लायक है। वही इस कायनात का खालिक व मालिक और मुख्तार कुल है। वही रज़्ज़ाक, कारसाज, हाजत रवा और मुश्किल कुशा है। जबकि हिंदू सकाफत की बुनियाद शिरकत और बुत परस्ती पर है। हिंदू तीन खुदाओं को मानते हैं, यानी विष्णु, शिव और ब्रह्मा। इसके अलावा भी वो कई देवताओं और देवियों पर एतकाद रखते हैं और इनकी मुख्तलिफ मूर्तियों की परस्तिश करते हैं। इस्लामी सकाफत मुसावात तो बराबरी की आलमबरदार है, यानी तमाम इंसान बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। खुदा ने जातें, बिरादरियां और कबीले पहचान के लिए बनाए हैं। अल्लाह के नज़दीक मोअज़्ज़ज़ शख्स वो है जो मुत्तकी और परहेजगार है। जबकि हिंदू सकाफत जात पात के बंधनों में जकड़ी हुई है। हिंदुओं के यहाँ बेशुमार जातें हैं जिनमें बहुत ऊंच नीच पाई जाती है। मशहूर जातें चार हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश और शूद्र। पहली तीन जातें अफजल मानी जाती हैं, जबकि शूद्रों को दर्जा इंसानियत से गिरा दिया जाता है। इस्लाम के नज़दीक कोई आला और अदना मखलूक नहीं है, बल्कि अखलाक और किरदार के लिहाज से इंसान आला बनता है और अखलाक और किरदार से गिर कर अदना बन जाता है। जबकि हिंदुओं में ब्राह्मणों को आला मखलूक तसव्वुर किया जाता है, इनके बारे में यह अकीदा रहा है कि इनसे गुनाह सरजद होने की सूरत में कोई बासपुरस नहीं होगी। इस्लामी सकाफत की बुनियाद का ये उसूल है कि दुनिया आखरत की खेती है, ये जिंदगी आरजी है, मौत के बाद की जिंदगी गैर फानी है। आखरत की कामयाबी और नाकामी का दारोमदार उसी इसी दुनियावी जिंदगी पर है और ये कि खुदा तक रसाई का जरिया खुदा के पैगम्बर हैं। जबकि हिंदू सकाफत मसला आवागोन के तर्जुमान है, यानी जन्म बदलते रहते हैं। हिंदू खुदा तक पहुंचने के लिए बुतों का सहारा ढूंढते हैं और कई खुद साख्ता माबूदों के सामने सरबसजूद होते हैं। इस्लामी सकाफत छूत छात की कायल नहीं है। मुसलमानों के यहाँ अगरचा पाकीजगी और तहारत का आला मयार है, लेकिन वो बेजा कस्म की छूत छात पर यकीन नहीं रखते। जबकि हिंदू सकाफत छूत छात की कायल है। हिंदुओं के मुताबिक अगर कोई मुसलमान उनके जिस्म, लिबास, खुराक और पानी वगैरह को छू दे तो वो नापाक हो जाते हैं। मुसलमान अपने मुर्दों को कब्रों में दफन करते हैं, जबकि हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं। मुसलमानों के रहन सहन, खुराक, लिबास, शादी ब्याह की तकरीबात, कर्ज के हर शोबा शोबा जिंदगी में इस्लामी तालीमात की झलक नजर आती है। जबकि हिंदुओं के रहन सहन, खुराक, लिबास, शादी ब्याह की तकरीबात, कर्ज हर शोबा जिंदगी में हिंदू मत की झलक नजर आती है। इस्लामी सकाफत में गाने बजाने, मौसीकी और रक्स की कोई गुंजाइश नहीं। जबकि गाना बजाना, मौसीकी और रक्स हिंदू मजहब और सकाफत का लाजमी हिस्सा गर्दाना जाता है। इस्लामी सकाफत में बेवा की शादी की इजाजत है, बल्कि इसे पसंदीदा और मुस्तहसन करार दिया गया है। जबकि हिंदू सकाफत में बेवा की शादी ममनू है, बल्कि उनके यहाँ बाज औकात सती भी अदा की जाती है, यानी शोहर की वफात पर बेवा को भी जिंदा जला दिया जाता है। इस्लामी सकाफत जिद्दत पसंद है। ये अपने आप को जदीद और बदलते हुए हालात और तकाजों से हम आहंग करने की सलाहियत रखती है। जबकि हिंदू सकाफत कदामत पसंद है। ये अपने आप को जदीद और बदलते हुए हालात और तकाजों से हम आहंग करने की सलाहियत नहीं रखती। इस्लामी सकाफत आफाकी, आलमगीर और आला है। इसमें वसत और कुशादगी है, क्योंकि इस्लाम एक आलमगीर मजहब है और मुसलमान दुनिया के हर खित्ते में बसते हैं। जबकि हिंदू सकाफत महदूद और इलाकाई है, जो आफाकियत और वसत से महरूम है। इसकी वजह यह है कि हिंदू मत का ताल्लुक सरजमीन हिंदुस्तान से है, बाकी दुनिया में इसका वजूद नहीं है। कयाम पाकिस्तान और मुसलमानों की तहरीक आज़ादी की सबसे बड़ी वजह दो कौमी नजरिया था, जिसका मतलब यह था कि हिंदुस्तान में दो कौमें आबाद हैं, जिनका तर्ज जिंदगी, तर्ज मुआशरत और सकाफत एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मुसलमान हमेशा एक अलहदा कौम रहे हैं। दो कौमी नजरिया मुख्तलिफ अदवार में पेश किया जाता रहा। इब्तदा में मुजद्दिद अलिफ सानी, फिर सर सैयद अहमद खान और आखिर में अल्लामा इकबाल ने पेश किया। कायदे आजम ने इस नजरिए को आगे बढ़ाया और पाकिस्तान की बुनियादें इसी पर कायम हुई। दो कौमी नजरिया और सर सैयद अहमद खान। इनफरादियत की वजाहत। सर सैयद अहमद खान वो पहले शख्स थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए अलहदा कौमियत के तसव्वुर को निशाते सानिया दी थी। आपने फरमाया था कि हिंदुस्तान एक ऐसी दुल्हन है जिसकी हिंदू और मुसलमान दो आंखें हैं। हिंदुस्तान की खूबसूरती इन दोनों आंखों की दिलकशी और रानाई है। जब सर सैयद ने लिखा है कि हिंदू और मुसलमान दो आंखें हैं, तो उस वक्त भी सर सैयद अहमद खान दो कौमी नजरिए के बारे में कह रहे थे। आपने मुसलमानों के खोए हुए वकार की बहाली के लिए तहरीक अलीगढ़ शुरू की। इस तहरीक के पांच मकासद थे जो हसबे ज़ेल हैं। नंबर एक, अंग्रेजों के दिलों में बददिली और बदगुमानी को दूर करना। नंबर दो, अंग्रेज हुक्मरानों और मुसलमानों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात कायम करना। नंबर तीन, मुसलमानों की तालीमी फलाह बहबूद और फलाही इसलाह करना। नंबर चार, मुसलमानों को सियासी सरगर्मियों की तरफ मायल करना। नंबर पाँच, हिंदुस्तान में बसने वाली दीगर कौमों के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करना। हजरत शाह वलीउल्लाह ने 19वीं सदी के दौरे निस्फ में मुसलमानों की रहनुमाई की। ये दौर मुसलमानों के लिए इंतहाई जिल्लत आमेज और अजहद परेशान कुन था। वो माशर्ती, सियासी, सकाफती और तालीमी एतबार से जवाल की इंतहाई हदों को छू रहे थे। उस दौर में मुसलमान होना जुर्म था। जंगी आज़ादी में जब हिंदुओं ने मुसलमानों का साथ दिया, तो हिंदू लीडरों ने मुसलमानों को जंग का जिम्मेदार ठहरा कर उनको अंग्रेजों के अताप का निशाना बनाया। हिंदुओं ने खुद ही अपनी जुदागाना हैसियत तस्लीम करते हुए दलील दी कि हिंदू कौम तो पहले भी गुलाम थी, अंग्रेज आए तो फिर भी गुलामी से पीछे न छुड़ा सकी, दोबारा गुलामी का तौक उन्हें पहनना पड़ा। हिंदू तो बच गए, मगर मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ टूट पड़े। ये वो जमाना था जब सर सैयद अहमद खान ने मिल्लत इस्लामिया के तहफ्फुज़ और तरक्की का जिम्मा लिया। सर सैयद अहमद खान हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ख्वाहां थे। वो दोनों कौमों में हम आहंगी पैदा करना चाहते थे। 1857 की जंग आजादी के बाद हिंदुओं ने मुस्लिम कुश रवैया अपनाया और मुस्लिम कौम दो पार्टों के दरमियान आकर पिसने लगी। अंग्रेज और हिंदू दोनों कौमें मुसलमानों का के साथ बदला लेने के लिए मसरूफ थीं। दोनों ने मुसलमानों को मुआशी, मुआशरती, मजहबी और सियासी तौर पर दबाने की हर मुमकिन कोशिश की। मुसलमानों की सितम जरीफी के आलम में सर सैयद अहमद खान मैदान अमल में उतरे। उर्दू हिंदी तनाजे ने सर सैयद को अपना काम तेज करने पर मजबूर किया। बनारस के कमिश्नर से गुफ्तगू के दौरान सर सैयद ने खसूसन मुसलमानों की तरक्की की बात की तो वो बहुत हैरान होकर बोला कि पहले तो तुम दोनों कौमों की बात करते थे और अब सिर्फ मुसलमानों की भलाई की बात करते हो। तो सर सैयद ने जवाब दिया कि दोनों कौमें किसी काम में दिल से शरीक नहीं हो सकेंगी। अभी तो बहुत कम है, आगे से बहुत ज्यादा मुखालफत और इनाद इन लोगों के सबब होगा जो तालीम याफ्ता कहलाते हैं। मौलवी अब्दुल हक ने कहा कि अगर सर सैयद की जिंदगी का मुताला किया जाए तो मालूम होगा कि पाकिस्तान की बुनियादें रखने में सबसे पहली ईंट इसी पीरे मर्द ने रखी थी। सर सैयद अहमद खान के जहन में ये बात थी कि मुसलमानों का सियासी शऊर हिंदुओं से अलग है, इसलिए 1885 में जब कांग्रेस का क्याम अमल में आया तो उन्होंने मुसलमानों को इसमें शिरकत से रोका। उनके सारे रवैये पाकिस्तान का तसव्वुर मुजमिर था। सर सैयद अहमद खान ने जमीनी रिश्ते के बजाय एतकाद के रिश्ते पर कौम की तश्कील के उसूल की हिमायत करते हुए कहा कि मुसलमान कौम एक वसी और पायदार बिरादरी है जिसकी बुनियाद रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाली। उन्होंने नस्ल या वतन के बजाय मजहब को बुनियाद बनाया। इस बिरादरी में शामिल होने वाले तौहीद का कलमा पढ़ते हैं। इस मुकद्दस कौमियत में तमाम इंसान बिला इम्तियाज रंगो वतन शामिल हैं। सिर्फ इस्लाम ही मुसलमानों की निजात का रास्ता है। सर सैयद दो कौमी नजरिए के हामी थे। उन्होंने मुसलमानों को असली चैलेंजों का सामना करने के काबिल बनाया और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के बजाय मोहम्मदन नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों को जमा होने की दावत दी। कांग्रेस हिंदुओं की जमात थी और इससे मुसलमानों को बेहतरी की तवक्का रखना बेबुनियाद था। आपने दो कौमी नजरिए की वजाहत करते हुए फरमाया, मुसलमान एक कौम है, इस्लाम के दायरे में शामिल तमाम अफराद मुस्लिम कौम हैं। याद रखिए, इस्लाम से वाबस्तगी हमें एक कौम का दर्जा देती है। अल्लामा इकबाल और दो कौमी नजरिया। अल्लामा इकबाल एक अजीम फलसफी थे। ये कायदे आजम के एक अजीम साथी साबित हुए और अपने अफकार और शायरी के अंदर एक नई रूह फूंक दी। आपने इस्लामी मुआशरे के क्याम के लिए हर कदम पर कौम की रहनुमाई की और मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के हुसूल की कोशिशें की। आपने बरेसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का ख्वाब देखा जिसे कायद ने जिंदा हकीकत बना दिया। जनूबी एशिया के बरेसगीर पाको हिंद के खत्ते में अल्लामा इकबाल जैसा मुफक्किर पैदा हुआ जिसने मुसलमानों को कुरान के इस्लामी तालीमात की तरफ रागिब करना शुरू किया और कहा कि उम्मत उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्लों और वतनों की तफरीक से मुख्तलिफ अकवाम में तकसीम हो जाना इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। ये पूरी उम्मत ईमान के इश्तराक पर उम्मत वाहिद है। अल्लामा इकबाल की तहरीर करदा शायरी की रोशनी में नजरिया पाकिस्तान की वजाहत वाज हो जाती है। नंबर 1, शानदार माजी। इकबाल ने सबसे पहले मुसलमानों को उनकी जहनी परागंदगी और गुलामी से निजात दिलाने की कोशिशें की और मुसलमानों के नौजवान तबके को अपना मकाम पहचानने की तरगीब दी। आपने उम्मत मुस्लिमा के शानदार माजी को उजागर किया और फरमाया, कभी ए नौजवान मुस्लिम, नौजवान ए मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था जिसका है एक टूटा हुआ तारा। नंबर 2, अलहदा कौमियत नाकाबले अमल है। अमृतसर 1909 में मेहमान खसूसी की हैसियत से इकबाल ने फरमाया कि मैं खुद इस ख्याल में रह चुका हूँ कि इम्तियाज मजहब इस मुल्क से उठ जाना चाहिए, मगर अब मैं सोचता हूँ कि कौमी तशख्स को महफूज रखना हिंदुओं और मुसलमानों के लिए जरूरी हो गया है। हिंदुस्तान में अगर एक मुश्तरक कौमियत पैदा करने का ख्याल खूबसूरत और शरीयत से मामूर है, ताहम ये नाकाबिले अमल है। नंबर 3, हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं। 1930 में इकबाल ने मुस्लिम लीग के सदारती इजलास में फरमाया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, इनमें कोई चीज मुश्तरक नहीं और गुज़िश्ता एक साल से वो हिंदुस्तान में एक अलग हैसियत कायम रखे हुए हैं। इन दोनों कौमों के नज़रिए आज़ादी में फ़र्क है, और वाज़ अल्फाज में ये कह देना चाहता हूँ कि हर जमात को कौमी इंतखाब का हक हासिल होना चाहिए। नंबर 4, नस्ली और बातनी कौमियत का तसव्वुर इस्लाम से मुतसादिम है। अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद में फरमाया कि इस वक्त कौम और वतन का तसव्वुर मुसलमानों की निगाहों में नस्ल का इम्तियाज पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से इस्लाम के असरात इंसानियत पर कम हो रहे हैं। ये मुमकिन है कि नस्ली इम्तियाजात फरोग पा जाएं। ऐसे उसूल कायम ना करो जो तालीमात इस्लामी के बिल्कुल मुतजाद हों। नंबर 5, इस्लाम में दीन और सियासत की अलहदगी की गुंजाइश नहीं। इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद में फरमाया कि हमारा दीन वो जाब्ता हयात है जो जिंदगी के हर मामले में हमारी रहनुमाई करता है। हमारी सियासत का वजूद मुकम्मल कुरान हकीम है, और अजरुए शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहब और सियासत में कोई फर्क नहीं। निजामे पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा होवे सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। नंबर 6, कयाम पाकिस्तान इस्लामी तमद्दुन की बुनियादी शर्त है। अगरचा खुतबा इलाहाबाद में इकबाल ने लफ्ज पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं किया, तहम उन्होंने इस्लामी मुमलिकत का तसव्वुर पेश किया। आपने फरमाया कि हिंदुस्तान मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क है। अगर इस्लाम को एक तमद्दुनी कुव्वत की हैसियत से जिंदा रहना चाहिए तो इसकी किसी इलाके में मरकजियत जरूरी है। नंबर 7, इस्लामी रियासत की बुनियाद इखलाकी नस्बुल ऐन है। इस्लामी रियासत का इन्हिसार इखलाकी नस्बुल ऐन पर होता है, क्योंकि मुसलमान जिस इलाके में भी रहता हो वो अपने आला इखलाक के बिना पर दूसरे लोगों से मुमताज हैसियत रखता है, और यही वजह है कि मुसलमान मुल्क व मिल्लत की बुनियादें आला इखलाक पर इस्तवार करते हैं। नंबर 8, मुसलमान कयादत वो जो दीन की रूह से आशना हो। खुतबा इलाहाबाद में इकबाल ने फरमाया कि गुलाम कौम का लीडर उन्हें आजाद करवाने में कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अपने दीन के फलसफे से बखूबी आशना ना हो। जहाँ मुसलमान रहनुमाओं में ऐसे फर्द हों जो दीन की रूह को समझ सकते हों, और साथ साथ उनमें ये सलाहियत भी मौजूद हो कि जदीद तारीख से बखूबी आगाह हों, ऐसे लोगों पर किसी कौम की कुवत अमल का इन्हिसार होता है। नंबर 9, मगरबी जमहूरियत सरमायादारों की साजिश है। इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद में फरमाया कि जो लोग ये समझते हैं कि मुसलमानों को मगरबी जमहूरियत में जम कर लेंगे, उनके जहन सख्त नाकारा है। मुसलमानों की जमहूरियत तो आज से 1400 साल पहले कायम हो चुकी थी। नंबर 10, मुआशी बदहाली का इलाज सिर्फ मुसलमानों के पास है। इकबाल ने अपने एक तवील तरीन खत के जरिए मिस्टर जिनाह को मुसलमानों के मुआशी मसले का तफसील से तस्किरा किया है। आपने कहा कि मुसलमान मुआशी बदहाली का शिकार हो रहे हैं। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के मुआशी मसले को इस्लाम का निज़ाम मईशत ही हल कर सकता है। नंबर 11, इस्लाम के सिवा कोई निज़ाम मोतबर नहीं। बाज लोग ये समझते हैं कि इकबाल इश्तराकी नज़रिए के मालिक थे, लेकिन आपने उन लोगों के इस वहम को दूर किया और अहमद सरवर के नाम एक खत में लिखा, मेरे नज़दीक फाशिज्म, कम्युनिज्म और जमाने हाल के किसी और इज्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस्लाम ही एक ऐसा निज़ाम है जो मोतबर और मौजिब निजात है। नंबर 12, मुसलमानों की इनफरादियत। इकबाल ने मुसलमानों की इनफरादियत का जिक्र यूं किया है, मुसलमानों का दूसरी कौमों से फर्क इतना है कि उनकी कौमियत का तस्वुर बिल्कुल मुख्तलिफ है। नंबर 13, इकबाल की मुजाहिदाना ललकार। इकबाल कब ये गवारा कर सकते थे कि मुसलमान ऐसे उसूलों को अपना लें तो इस्लामी उसूलों की नफी करें। यही वजह थी कि इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का तसव्वुर पेश किया। नंबर 14, इस्लामी इत्तेहाद का तसव्वुर। आपने फरमाया कि इस्लामी इत्तेहाद का तसव्वुर यह है कि मुसलमान जिस भी खित्ते इराजी से मुंसलिक हों एक ही जिनार में जकड़े हुए हैं। कोई रंगो नस्ल का तकाजा इनमें तफरीक नहीं कर सकता, और ना ही उनकी वहदानियत और इत्तेहाद को कोई ठेस पहुंचा सकता है, क्योंकि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबहा के काशवर। दो कौमी नजरिया और कायदे आजम। नजरिया पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कायदे आजम ने फरमाया कि पाकिस्तान तो उसी दिन मारिज वजूद में आ गया था जब पहला हिंदुस्तानी बाशिंदा मुसलमान हुआ था। कायदे आजम का ये फरमान इस बात को वाजह करता है कि नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद दरअसल इस्लाम पर है और यही कुव्वत थी जो तहरीक पाकिस्तान का सबब बनी। कायदे आजम के इरशादात की रोशनी में जुदागाना कौमियत के तसव्वुर की बुनियाद वजूद में आने लगी। मुमलिकत की जो तस्वीर बनती है उसके बुनियादी खतोखाल मंदरजा झेल हैं। 1931 में मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी करते हुए फरमाया, अब हम एक ऐसे मकाम पर आन पहुंचे हैं कि यहाँ मैं ये ना बताऊं कि मुसलमानों का मौकफ क्या है तो मैं अपने फर्ज से गफलत बरतूंगा। मैं वाज अल्फाज में ऐलान कर देना चाहता हूँ कि कोई ऐसा कानून जिसमें मुसलमानों के हकूक की जमानत न दी गई हो, खुदा की कसम 24 घंटे भी न चल सकेगा। एक मौके पर कायद आजम ने कहा कि तुम्हारी तादाद सबसे ज्यादा सही, तुम तरक्की याफ्ता सही, मगर फिर भी हमको मनाना मिटाना चाहो तो मिटाना सकोगे। बेशक तुम हमको मकलूब करो, जुल्मो सितम करो, हमने ये संगीन फैसला कर लिया है कि लड़ लड़ कर मर जाएंगे लेकिन अपने मिशन से नहीं हटेंगे। नंबर एक, जुदागाना कौमियत का तसव्वुर। 23 मार्च 1940 को लाहौर के तारीख साज इजलास से खिताब करते हुए फरमाया कि इस्लाम और हिंदू धर्म महज मजाहिब नहीं बल्कि दरहकीकत दो मुआश मुख्तलिफ मुआशरती निज़ाम हैं। चुनाचे इस ख्वाहिश को महज एक ख्वाब कहना चाहिए कि हिंदू मुसलमानों को अपने अंदर जम कर लेंगे। ये लोग आपस में शादी ब्याह नहीं कर सकते और ना ही एक दस्तरखान पर खाना खाते हैं। यही वजह है कि दोनों अलग तहजीबें हैं। ये पेज नंबर 13 है। पार्ट नंबर 1 यहाँ मुकम्मल होता है।